जन्नत अपना नृत्य समाप्त करके अपने कमरे में लौट रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार किया। जन्नत वहीं बेहोश होकर गिर गई। तभी एक और आदमी वहां आया और उसने उसे बोरे में डाला। सबकी नजरों से छिपाते हुए वो उसे गाड़ी में डालकर ले गया। उसके साथ वो लड़की भी मौजूद थी। गोडाउन के नीचे बने सीक्रेट एजेंसी ऑफिस में हलचल हो रही थी। निक, रॉन, एमा, जेन और आइलिया वहां मिस्टर मुखर्जी के आने का इंतजार कर रहे थे। आइलिया निक के पास आकर बोली, भाई आप इसे बांध क्यों रहे हैं? कहीं फिर से यहां से भाग जाए तो? और चिल्लाने, ओह सॉरी, ये तो बोली नहीं सकती ना, चलो इसके मुंह पर टेप नहीं लगाते हैं, निक ने कहा और कुर्सी पर बंधी जन्नत को देखने लगा। जैन बोली, भाई मुझे आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बेचारी के सिर से खून बह रहा है। आज तो मुझे पूरी किडनैपर वाली फील आ रही है। मैंने इससे पहले ही कहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन इसने मना कर दिया। अगर ये हाँ कह देती तो ये नौबत ही नहीं आती, निक ने जन्नत की ओर देखकर कहा, जो कुर्सी पर बेहोश बंधी हुई थी। और वो लड़की कहाँ पर है? एमा ने पूछा। रॉन ने उत्तर देते हुए कहा, उसे हम यहाँ पर नहीं ला सकते थे, इसलिए रास्ते में ही सीक्रेट एजेंसी ने उसे एक एनजीओ में शिफ्ट किया है। अंकल वहां पर मौजूद है। डोंट वरी, वो जगह उसके लिए बहुत सुरक्षित है। जब मामला शांत हो जाएगा तो मैं खुद उसे वहां से ले आऊंगा, निक ने बताया। तभी किसी के आने की आहट हुई। उन्हें लगा कि मिस्टर मुखर्जी आ गए। वे सब वहां से मिस्टर मुखर्जी के पास चले गए। उधर जन्नत को भी होश आने लगा। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कैप्टन निक, आप किसी लड़की को जन्नत बाजार से सुरक्षित बाहर निकाल लें। वो लड़की हमारी बहुत मदद कर सकती है, बहुत कुछ बता सकती है, निक ने कहा। लेकिन वो तो बोली नहीं सकती, क्या बताएगी? पढ़ी लिखी भी नहीं है जो लिखकर बता दे। हाँ, साइन लैंग्वेज में बता देगी। मिस्टर मुखर्जी उन सबके साथ अंदर आए। अंदर आकर उन्होंने देखा कि जन्नत उनके सामने खड़ी हुई थी और गुस्से में उनकी ओर देख रही थी। उसे खुला हुआ देखकर निक ने हैरानी से कहा, अरे तुम्हें खोला किसने? मैं तो तुम्हें यहां पर बांध कर गया था। जन्नत उसकी ओर गुस्से में देख रही थी। मिस्टर मुखर्जी जन्नत को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उनके इस व्यवहार से वे सभी हैरान रह गए। निक ने पूछा, क्या हुआ मिस्टर मुखर्जी? मिस्टर मुखर्जी ने कहा, आप इसे वहां से बचा कर लाए हैं। हो माई गॉड, गलती आपकी भी नहीं है सर, मुझे आपको बता देना चाहिए था, पर मैं नहीं जानता था कि यही जन्नत है। आप जानते हो जन्नत को? एमा ने पूछा। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, मैं जन्नत को तो नहीं, लेकिन इसे जरूर जानता हूँ। अरे ये तो मिस शर्मा है, मिस प्रियल शर्मा, ये खुद इस मिशन में इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यही वहां पर जन्नत बनकर रह रही है, और आप हमारी ही ऑफिसर को वहां से बचा कर ले आए। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मिस शर्मा, आई थिंक अब आपके लिए जन्नत बाजार में जाना सही नहीं होगा। निधि ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आपके वहां से गायब होने की वजह से काफी हड़कंप मच चुका है। जैसे ही मिस्टर मुखर्जी ने प्रियल की जन्नत होने की बात बताई, निक एकटक प्रियल की ओर देखने लगा। उसकी आंखों के सामने वे सब दृश्य आने लगे जो उसने जन्नत के साथ बिताए थे। कैप्टन निक, मिस शर्मा की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आप पर है। मैं बाहर का माहौल सुधारने की कोशिश करता हूँ। मिस शर्मा के मिशन के बीच में आने की वजह से मुझे सीनियर्स को भी जवाब देना होगा। ये बोलकर मिस्टर मुखर्जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद निक और प्रियल एक दूसरे की ओर गुस्से में देख रहे थे। निक प्रियल की ओर बढ़ा और उसे खींचकर बिल्कुल करीब ले आया। निक के करीब आते ही प्रियल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। निक ने नम आंखों से कहा, ओ तो इसलिए तो मुझे अपने पास नहीं आने देती थी। खुद पर तो काबू रख लोगी, लेकिन अपनी धड़कनों को संभालना तो तुम आज भी नहीं सीखा। उसकी बात सुनकर प्रियल को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे धकेलते हुए कहा, हाँ ये दिल मेरी नहीं सुनता, क्योंकि ये दिल मेरा नहीं है ना, आपकी ऐली का है। मुझे अपने जज्बातों पर काबू रखना अच्छे से आता है, लेकिन आपकी ऐली को नहीं। उसकी बात सुनकर निक को भी बहुत गुस्सा आया। वो फिर से उसके पास पहुंचा और उसे पकड़कर बोला, ये क्या बचपना है? ये बचपना नहीं, सच्चाई है। भूल गए आप कि धोखे से मैंने और मेरी नानी ने आपकी ऐली का हार लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? ओ हाँ, मर्डर किया था आपकी ऐली का। निक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक पल के लिए वहां चुप्पी छा गई। एमा उसके पास आकर पूछी, तुम सच में प्रियल हो? अगर तुम प्रियल हो तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं इतने दिनों तक? जैन बोली, हाँ तुम हमें एक हिंट तो दे ही सकती थी, हम लोग भी उसी काम के लिए यहाँ पर हैं जिस काम के लिए तुम हो। रॉन बोला, प्रियल तुम्हें यहाँ देखकर कितनी खुशी हो रही है, और जब जीनी को पता चलेगी तो वो तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि जन्नत ही प्रियल है, मैं तो इसे देखते ही पहचान गई थी, आइलिया बोली। प्रियल बोली, ओ रियली आइलिया, तो मुझे देखते ही पहचान गई थी, तभी शायद जलने के लिए मुझे वहां पर छोड़ दिया था। कैसी दोस्त हो तुम, जैसे मंदिर का घंटा समझ लिया हो सबने, जब देखो सब आते जाते बचाते रहता है, कभी रूपाली तो कभी ये आइलिया तो कभी। बोलते हुए प्रियल गुस्से में निक को देखा और अपने सिर पर लगी चोट पर हाथ लगाया। मैंने तो धीरे से मारा था, ज्यादा लगी तो नहीं ना तुम्हें, निक ने कहा। जैसे ही निक ने अपनी बात खत्म की, प्रियल इधर उधर देखा तो उसे वहां पर एक डंडा दिखाई दिया। वो डंडा लेकर निक के पीछे मारने के लिए भागने लगी। प्रियल भागते हुए बोली, मैं भी उतना ही धीरे से मारूंगी। निक उससे बचने के लिए आगे आगे भाग रहा था। उसने दौड़ते हुए कहा, अरे गुड़िया, तुम दिल पर तो नहीं ले रही हो मेरी बात। मैंने तो जन्नत को मारा था, मुझे क्या पता था तुम ही जन्नत हो। इस हिसाब से तो मुझे तुम्हारे पीछे चाकू लेकर भागना चाहिए। तुमने तो मेरा हाथ ही काट दिया था, पता है कितनी मुश्किल से ठीक हुआ था। और उसके बाद मेरे साथ हुआ उसका क्या? उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो गुड़िया। और रही बात भूखा रहने की, तो मैंने तुम्हें खाना भिजवाया था, तुम्हारी वजह से मुझे खाना नहीं मिला उस दिन। एमा बीच में चिल्लाते हुए बोली, हाँ प्रियल, इसके सिर पर जोर से मारना ताकि इसकी अकल थोड़ी ठिकाने आ जाए, पिछले 5 सालों में बिल्कुल पागल हो गया है। निक दौड़ते हुए बोला, तुम और जीनी तो मुझसे बात नहीं कर रही थी ना, तो अपना मुंह बंद ही रखो। वो दौड़ते हुए अचानक रुका और प्रियल की ओर मुड़कर बोला, जब मैंने बार बार तुम्हें आने को कहा तब तो तुम आई नहीं मेरे साथ। फिर मैंने आज सुबह रूपाली से एक बात सीखी थी कि अगर कोई बार बार नहीं माने तो उसे मार कर सिखाना चाहिए। हाँ, अब उसी से सब कुछ सीखना बाकी रह गया इनका। प्रियल को शांत देखकर निक ने उसके पास आने की कोशिश की, क्या मैं तुम्हें हग? निक अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि प्रियल फिर से डंडा लेकर निक के पीछे भागने लगी। निक भागते हुए बोला, ये तो नेक्स्ट लेवल अत्याचार है। क्या गुड़िया हर शाम दूसरों की जन्नत सजाती रहती थी और जब पति ने गले लगाने के लिए बोला तो डंडा लेकर पीछे भाग रही हो। बहुत दिनों बाद इन दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, रॉन मुस्कुराते हुए बोला। ऐसा लग रहा है कि लाइफ फिर से चल पड़ी है, नहीं दौड़ने लगी है, आइलिया हंसते हुए बोली। हाँ, 5 सालों में जैसे सब कुछ रुक गया था, वो सब अचानक से एक झटके में फिर सही हो गया, जैन बोली। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन प्रियल को डंडा फोड़कर मारना चाहिए, तब लगेगा उसे। एमा का ध्यान अभी भी निक और प्रियल पर था। प्रियल निक के पीछे दौड़ते दौड़ते अचानक बेहोश हो गई। उसे गिरता देखकर निक दौड़कर आया। गुड़िया, क्या हुआ तुम्हें? तुमने इतनी जोर से मारा था कि बेचारी दूसरी बार बेहोश हो गई, एमा बोली।
निक प्रियल के सिर पर लगी चोट को देखा। चोट से हल्का खून निकल रहा था और साथ में सूजन भी आ गई थी। निक ने प्रियल को गोद में उठाया और बोला, इसे हॉस्पिटल तो नहीं ले जा सकते, लेकिन अपने घर पर लेकर चलते हैं। रॉन बोला, प्रियल को घर ले जाना सही होगा क्या, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि वो इतने दिनों से इस मिशन के लिए मेहनत कर रही है। निक उसे उठाकर चलते हुए बोला, ये जानने के बाद कि ये प्रियल है, मैं इसे उस जगह पर वापस कभी नहीं जाने दूंगा। इसके लिए चाहे ये मुझसे झगड़ा करे या मार ही देना ले, देखो कितनी वीक हो गई है। आइलिया बोली, भाई चिलो ना, प्रियल को अपने घर लेकर चलते हैं। जीनी और परी भी वहीं पर हैं, जब वो प्रियल को देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। जीनी का नाम सुनकर रॉन ने हैरानी से कहा, आइलिया, जीनी यहाँ कब आई? वो तो USA में है ना, मेरी बात भी हुई थी उससे। आइलिया बोली, हाँ सर, जीनी आपको सरप्राइज देने के लिए आई थी। चलो अब चलकर उसे सरप्राइज देते हैं। अरे गुड़िया, तुम हल्की कैसे हो गई? प्रियल के बेहोश हो जाने के बाद निक उससे बात कर रहा था। वे सभी सीक्रेट एजेंसी के ऑफिस से निकलकर अपने घर चले गए। जन्नत को जन्नत बाजार से गायब हुए लगभग 4 घंटे हो गए थे। सभी लड़कियां एक जगह इकट्ठी थीं। वो आदमी जिसने जन्नत को खरीदा था, वो सुनहरी और रूपाली को बंदूक की नोक पर लेकर बैठा था। पूरे जन्नत बाजार में हड़कंप मच गया था। जन्नत और फुलवा के गायब होने से सब हरकत में आ गए थे। उस आदमी ने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है जन्नत, मुझे उसे कल शाम तक बड़े साहब के पास पहुँचाना है। रूपाली बोली, अरे कौन बड़े साहब, आपने नहीं खरीदा था क्या उसे? उस आदमी ने कहा, अपना मुंह बंद रखो, जितना बोला है उतना करो। मंत्री का बेटा हूँ, कोई कुबेर का बेटा नहीं जो इतने पैसे देकर एक कोठे वाली को खरीद लूँ। मेरी इतनी औकात है क्या कि तुम लोगों को उसके इतने पैसे दे सकूँ? उसे एक दिन हमारे बड़े साहब ने देख लिया था, तब उन्हें वो पसंद आ गई थी। वैसे भी वो ऐसी लड़कियाँ खरीदते रहते हैं और उसके बाद विदेशों में भेज देते हैं, जब भी उनका मतलब निकल गया। सुनहरी ने डरते हुए कहा, हम सच में नहीं जानते जन्नत कहाँ चली गई। इस जन्नत बाजार से आज तक कोई लड़की नहीं भाग पाई, फिर पता नहीं कैसे जन्नत और फुलवा गायब हो गई। उस आदमी ने कहा, गायब नहीं हुई, उठवाया है किसी ने। अगर कल शाम तक जन्नत नहीं मिली तो तुम दोनों को उठा दूंगा मैं इस दुनिया से। सुनहरी बोली, तुम हमें छोड़ोगी तभी तो हम जन्नत को ढूंढ पाएंगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल शाम तक का टाइम है तुम लोगों के पास। अगर जन्नत नहीं मिली तो इस जन्नत बाजार के ताले ना पड़वा दिए तो कहना। वो आदमी सुनहरी और रूपाली को धमकी देकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रूपाली जल्दी से सुनहरी के पास आई। रूपाली बोली, बोला था ना ताई तुझे कि जन्नत भाग जाएगी, तुम ऐसे ही उसे छोटी बहन बेटी बनाती रही, देख ले धोखा दे दिया उसने तुझे। जन्नत के भागने की वजह से रूपाली की डील कैंसिल हो गई थी और वो इस वजह से काफी गुस्सा थी। सुनहरी बोली, जन्नत की इतनी औकात नहीं कि वो यहाँ से जा सके, जरूर इसमें किसी और का भी हाथ है। मैं अभी अपने गुंडों को भेजती हूँ, बोलती हूँ कि पूरे कोलकाता में फैल जाए, दिन रात एक कर दे उसे ढूंढने के लिए। एक बार मिलने तो दे, फिर बताती हूँ मैं उसे, चमड़ी ना उधेड़ दी उसकी तो कहना। अंकल भी मिस्टर मुखर्जी को छोड़कर जन्नत बाजार में आ गया और वो भी जन्नत को ढूंढने का दिखावा कर रहा था। सुनहरी और रूपाली जन्नत के कमरे में थीं। वे दोनों उसके सामान को खंगाल रही थीं कि कहीं उसके तार किसी पुलिस वाले से तो नहीं जुड़े हुए। तभी अंकल वहां पर आया।
अंकल बोला, वो जन्नत कहीं नहीं मिली, मैंने तो पहले ही कहा था कि मत भेजो उसे, देख लो करवा दिया ना सारा नुकसान। सुनहरी गुस्से में बोली, नुकसान तो तब से हो ही रहा है साहब, जब से आप लोग हमारी जिंदगी में आए हो, पता नहीं कौन सी मनहूसियत फैला दी हमारी जिंदगी में, सब कुछ तहस नहस सा लग रहा है। अच्छा, इसमें हमारी क्या गलती है? और तुम्हें इतनी ही हमारी गलती नजर आ रही है? तो अब तक हमने तुम्हारे जन्नत बाजार में और इस डील के चक्कर में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, कल शाम तक हमारे पैसे हमें लौटा देना, हम चले जाएंगे। अंकल ने भी झूठा गुस्सा करने का दिखावा किया। उसे गुस्से में देखकर सुनहरी और रूपाली ने एक दूसरे की ओर देखा। रूपाली ने उसे शांत करवाते हुए कहा, अरे साहब आप गुस्सा मत कीजिए, ताई का थोड़ा दिमाग खराब है तब बोल रही है, आप आराम से बैठिए, हम ढूंढते हैं जन्नत को। हाँ तो समझ जाओ, हम भी कोई यहाँ फुकट में नहीं बैठे हैं, अंकल ने गुस्से में कहा और वहां से बाहर निकल गया। जब सब लोग इधर उधर हो गए तो अंकल ने मिस्टर मुखर्जी को कॉल करके वहां के हालात के बारे में बताया। अंकल बोला, जब से नानी की मोरनी को मोर ले गया है तब से नानी पागल गई है, इन शॉर्ट उसे मोरनी चाहिए भी और मिली तो उसे काले चोर को भी नहीं देगी, और हाँ अब नानी का अपनी मोरनी के लिए प्यार खत्म हो चुका है और वो उसे भी खत्म करके ही छोड़ेगी, तो फिलहाल मोरनी वापस नानी के घर पर ना आए तो ज्यादा सही रहेगा। मिस्टर मुखर्जी ने फोन पर ओके कहा और कॉल काट दिया। अंकल गुनगुनाते हुए वापस सुनहरी के पास जाने लगा, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बचा था काले चोर ले गए।